पदावली की भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव। पहला, ब्रजभाषा की मूल प्रकृति ओकारांत है। पदावली में अनेक ओकारांत शब्द मिलते हैं। इनकी संख्या क्रियापदों में अपेक्षाकृत अधिक दिखाई पड़ती है। नीचे भूतकाल में ओकारांत क्रिया के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहला, तिमिर मिलौ। दूसरा, उगौ सहस दस दारुण चंद। तीसरा, करौ कमल बन कील भमरा। चौथा, पिबौ मधुर मधु भूखल भ्रमर रे। पाँचवा, मनोरथ पुरेयो। छठा, छठी जैठा मिलियो। सातवा, पुन्न बलियो। आठवा, एक दिन सकल जवन बल चलियो। नौवा, मानो मन आनंद भरयो। दसवा, वायरस विसरी गयो। ग्यारहवा, दसवीं भंजेयो। बारहवा, गुढ़िय गजेयो। तेरहवा, समर दर्शेयो। चौदहवा, केतकिसन भरियो। पंद्रहवा, परताप गहियो। सोलहवा, काल दर्शेयो। सत्रहवा, भूत बेताल बिछलियो। अठारहवा, सुकवि नव जयदेव भनियो। उन्नीसवा, गुणक निधान गनियो। बीसवा, देहि अनुमने जुझौ पंचवान। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये रूप ब्रजभाषा के भूतकालीन क्रिया रूपों के पुराने अवशिष्ट हैं। ब्रज के मिल्यो, कर्यो, पिब्यो, चल्यो, भर्यो, गयो, भंज्यो, गंज्यो, दरस्यो, भर्यो, गह्यो, बिछल्यो, वन्यो, गयो, जुझ्यो आदि रूप इन्हीं के विकसित रूपांतर हैं। पूर्वी भाषाओं में भूतकाल में ल विभक्ति लगती है। दूसरा, उत्तम पुरुष एक वचन से सामान्य वर्तमान के रूप भी ब्रजभाषा में पूर्ण साम्य रखते हैं। पहला, प्रिय विष लेखे रहो निर्थेग। दूसरा, एक सरी हमें धन सुनऊ जाग। तीसरा, हरेऊ चौदिश झखऊ रोय। चौथा, करजोरी बिन मऊ तरंगे। पांचवा, भने विद्यापदे समदौ तो ही। छठा, दूर हूँ दुगुन एणी मैं आवाऊँ। सातवा, मदन वाने नुरछली अधौ। आठवा, सहौ जीव अपने। नौवा, गरुड़ मांगो पांखी। दसवा, नंदेरी नंदन मैं देखी आवाऊँ। यही नहीं, संज्ञा और विशेषण तथा कुछ सर्वनाम भी ओकारांत प्रयुक्त हुए हैं, जैसे ककरो, कमन जओ, पवन जयो, दखिनओ। इन रूपों पर भी ब्रजभाषा का सादृश्य सूचक प्रभाव स्पष्ट ही परिलक्षित होता है। कुछ अत्यंत ही विशिष्ट रूप जो ब्रजभाषा की निजी विशेषताओं से मेल खाते हैं, पदावली की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा, ब्रजभाषा सर्वनामों के साधित रूप जा, ता, का, वा प्रसिद्ध है। इनके संयोगों से जाकों, बाकों, ताकों, काकों आदि रूप बनते हैं। ब्रजभाषा में जुस्तिस के लिए जा, ता आदि साधित रूपों से ही काम चला लिया जाता है। विद्यापति ने निम्नलिखित प्रयोग किए हैं। पहला, जा लाग चादन विख तह मेल, जा लगी दखिन पवन भेल सायक। तीसरा, तापर रतलि नारि। चौथा, तापति सभे असार। इस प्रकार के विशिष्ट रूप न सिर्फ सूरदास बल्कि उनके पहले के ब्रजभाषा कवित्वों में भी प्रयुक्त हुए हैं। सूरदास ने भी इस तरह के प्रयोग किए हैं। पहला, जाको दीनानाथ निवाचे। दूसरा, जाको नित सौदर्शन भय। तीसरा, जा गाये निर्भय पद पाए। चौथा, सारंग पानि राय ता ऊपर। पांचवा, तारा गंता मधिचंद विराजत। छठा, ताके तंदुल खाए। सातवा, ताके तंदुल खाए। आठवां, ताकों मिले भरत कौनाई। चौथा, यही विद्यापति ने उत्तम पुरुष सर्वनाम के विभिन्न विकास रूपों का भी ब्रजभाषावत प्रयोग किया है। उन्होंने मैं, मो, मोरा, मोहि तथा मोराह, मोहू आदि प्रयोग किए हैं। सूरदास के प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। सूरदास के कुछ समानांतर प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। पहला, मैं मेरी अब रही न मेरे छुटियो देह अभिमान। दूसरा मोआ नाथ के नाथ हरे। तीसरा अब मुही शरण राखिए नाथ। चौथा यह जीवन धन मोरा। पांचवा इसी प्रकार मध्यम पुरुष सर्वनाम के प्रयोगों में भी समानता दिखाई पड़ती है। कभी विद्यापति ने तो ही तो हों आदि प्रयोग किए हैं। सूरदास के प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। पहला सो तो ही श्याम दयो। दूसरा अपनी भेद तुम्हें नहीं कहे हैं। तीसरा तुम्हें श्याम हम कहाँ दिखावें। चौथा तय है उनको मूढ़ चढ़ायो। सिर्फ यही नहीं कि उत्तम और मध्यम पुरुष सर्वनामों में यह समानता है, अन्य पुरुष सर्वनामों में भी यह समानता दिखलाई पड़ती है। विद्यापति ने अन्य पुरुष सर्वनामों के निम्नलिखित प्रयोग किए हैं। तसु तय सूर्य के प्रयोग ऊपर ता वाले साधित रूप के साथ दिए जा चुके हैं। छठा विद्यापति ने निश्चयवाचक सर्वनाम के जो प्रयोग किए हैं उनमें निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने ई एहु एहु आदि निकटवर्ती निश्चय तथा ओहु ओहो आदि दूरवर्ती निश्चय के प्रयोग किए हैं जो ब्रज भाषा में यदि और बहुवे में बदल गए हैं। सूरदास को समानांतर प्रयोग देखिए। पहला यही आशा पाप निद है। दूसरा यही बात मधुपुरी जहत। तीसरा यही माधव जिन मधु मारे। चौथा तुम देखे और ओ। पांचवा घोरत काहिन ओह। सातवां प्रश्नवाचक सर्वनाम के को वाले रूप भी ब्रज से प्रभावित है। मागधी से निकली पूर्वी भाषाओं में के वाले रूप मिलते हैं। विद्यापति के प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। को विहि निर्मल वाला। दूसरा इह रस को पाए जान। सूरदास ने भी इस प्रकार कुछ प्रयोग किए हैं। पहला एसव को करी। दूसरा तू को कौन देश है तेरियो। आठवां अनेक परसर्गों के प्रयोग भी इन प्रभावों को सूचना देते हैं। तृतीया में अनेक स्थानों पर विद्यापति ने संयो रूप का प्रयोग किया है। यही संयो सौ में बदल जाता है। संयो संयो सौ। वस्तुतः मूल रूप सौ ही है जो अनुलेखन पद्धति के कारण सौ लिखा गया है। सूरदास में सौ के प्रयोग हजारों की संख्या में मिलते हैं। विद्यापति की पदावली में दो स्थानों पर सौ भी मिलता है। अमेय पिय ओलह दिश सौ घोरी। दूसरा धन सौ उजवन छैलो जाति। दो स्थान पर स्वरूप भी मिलता है। सिर सो बहिगेल गंग। दूसरा उगवा सो काज। इसमें पहला रूप अपदान कारक का है। सूर ने भी सो का प्रयोग अनेक स्थानों पर अपदान कारक के रूप में किया है। नौवा वाक्य विन्यास संबंधी भी कुछ अद्भुत विशेषताएं ब्रज भाषा और पदावली में समानताएं रखती हैं। ऊपरी से बना हुआ पर पई पय ब्रज भाषा में द्वितीय प्रयुक्त होते हैं, कभी कभी अपादान में भी। मय उन पय बन गाय चराई। यह प्रयोग तृतीय में है पर जाचक पय जाचक कह जाचय। मेम प्रयोग अपादान में दिखाई पड़ता है। विद्यापति के कुछ प्रयोग देखिए। एह रस को पय जान। दूसरा पानी पय सीकर भिलकान। तीसरा बोलली बोल उत्तिम पय राख। दसवां समता सूचक कुछ और फुटकर प्रयोग देखकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। तीसरा वर्तमान कृतंत के आवत ब्रज भाषा का आवत उसरत खेदत गरसत जात झरकत झांखति जाति तोलत आदि रूप मिलते हैं। किंचित परिवर्तित होयत रूप भी इसी प्रकार का है। सूर के उदाहरण देखिए नीचे मिल जाते हैं। तीसरा वर्तमान कृदंत के अंत वाले रूप में भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। गर्जंति बरसंति या हसंत वर्तमान कृदंत के समान तथा वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले यह बहुत पुराने रूप हैं। यह भ्रंश अभर तथा पुरानी ब्रज भाषा में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ग्यारहवा क प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के एतही एति एते रूप मिलते हैं। सूर के प्रयोग देखिए। पहला यशोदा एति ही कहा रिसाही। दूसरा एति कीति तुमरी उनकी। तीसरा गांव वसत एतय दिवस निमय। ख प्रकारवाचक जयों जौ ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। ग विद्यापति का तयों ही सूर का तव और तव है, तयों न छपल बुध तोरी। दूसरा तई औ तन ही की प्यारे दुति। तीसरा देखत सुनत सभय जानत, हौ तौ न आओ वाज। चौथा तौ जतन करे अरु पोखे, विद्यापति का तौ ही सूर का त्यों है, इसमें संदेह नहीं। मुइये तौ भाव लाग भल, सूरदास त्यों ही कहीं गायो। बारहवा विद्यापति ने पूर्वकालिक द्वित्य का भी प्रयोग किया है, जैसे भविकरि कसिकई तेज कौ देखी कौ। इस तरह का सबसे पुराना रूप देहविकरी संदेश राशक में आता है, इसका संबंध डॉक्टर मायाड़ी ने ब्रजभाषा के साथ उदाहरण देकर दिखाया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पदावली की भाषा में ओकारांत विशेषण और संज्ञा, भूतकालिक ओकारांत क्रियाएं, सर्वनाम और परसर के अनेकानेक रूप तथा वर्तमान कृदंत के बने सामान्य वर्तमान कालिक रूप मिलते हैं, जो इसे स्पष्टतया ब्रजभाषा से प्रभावित घोषित करते हैं। किंतु यह प्रभाव ही है, पदावली की मूल भाषा निश्चय ही पुरानी मैथिली है, जिसकी कुछ अपनी खास विशेषताएं हैं, जिसे संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है। तेरहवा पदावली की भाषा की पहली विशेषता यह है कि यह अपने रूप और आकार में तत्कालीन उपलब्ध सभी प्राचीन हिंदी रचनाओं की भाषा से भिन्न प्रतीत होती है। यह विभिन्नता मूलतया इस कारण उपस्थित हुई कि प्राचीन हिंदी रचनाएं अधिकांशतः पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की लिखी हुई हैं। पदावली की भाषा निसंदेह अपने पूर्वी तत्वों के कारण आदिकालीन हिंदी भाषा में एक नई रंगत ले आती है। पदावली के लिपिकार प्रायः ही अनुस्वार युक्त स्वर को ल व्यंजन के साथ लिखा करते हैं, इसलिए पदावली में इस तरह के बहुत से प्रयोग मिलेंगे, जैसे मय जयो संयो निय नयो। ये वस्तुतः अनुलेखन पद्धति की विशेषता के कारण है, यही प्रक्रिया कीर्तिलता में भी मिलती है। चौदहवा पदावली में प्रायः ही वे सभी स्वर और व्यंजन मिलते हैं जो सीमान्यता मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्राप्त होते हैं। यदि उच्चारण की वैज्ञानिकता के दृष्टि में रखें तो ह्रस्व ए और औ के भी उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे निम्नलिखित पद्यांश में ह्रस्व ए और औ के प्रयोग मिलते हैं। बड़े सुखे सासु मम ओवाह मथा, ऊठ बुरत सुर सरि के सथा, करव सखि जाने केली अलापय, विलग होइत फुफुआयत सापय। यह प्रवृत्ति कीर्तिलता की भाषा में तो मिलती ही है, बाद के कवि तुलसी और सूर की रचनाओं में भी मिलती है। पदावली की भाषा में प्रायः स्वरों के बीच की विवृति को संधि प्रक्रिया से दूर कर दिया गया है, फिर भी बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें विवृति ज्यों की त्यों वर्तमान दिखाई पड़ती है। वृत्ति सुरक्षित आईपन आईसन आओक गमावय गरई चरई छड़ेओ तोलियो देई दौ नुकावय। संधि उर एवह एलैहो एसन कसौटी कसवट चौठिक चौदिस चौपास छैल मौली जौन। संस्कृत मौली प्राकृत में मौली में बदल गया है, भैलो। पंद्रहवा स्वर संकोच अनेक स्थलों पर संप्रयुक्त स्वर संधि प्रक्रिया से या संकोच के कारण काफी बदल गए हैं, जैसे अंधारी अरसी उगौ कुंभार गंवार वेवी मोर। सोलहवा विद्यापति ने पदावली में अक्षर अर्धस्वर य के लिए इ या ए और व के लिए उ या ओ का प्रयोग किया है। कभी कभी इ या ए में और उ का ओ में सीधा परिवर्तन भी होता है। आई आइत आईती आउती आयल उपजाउल उपारय। सत्रहवा स्वर भक्ति विद्यापति ने मध्यकालीन अनेक दूसरों कवियों की तरह द्वित्व व्यंजनों को उच्चारण के दृष्टि से सरल करने के लिए मध्य स्वरागम या स्वर भक्ति का सहारा लिया है। इस तरह के प्रयोग नीचे दिए जाते हैं। अज्ञान, अजुगुत, अपरूव, आरति, उद्वेगल, गर्जन्ति, गरसो, गराने, जतनई, उकुति। 18वां, पदावली में अनेक स्थानों पर ड और ल के ऐसे प्रयोग मिलते हैं जो एक दूसरे की परस्पर विनिमयता सूचित करते हैं। आचर, आजुरी, इजोरी, उधारी, खेलाघ, उपारिये, उवटी, काजर। 19वां, ख ध्वनि का प्रयोग प्राय श के लिए हुआ है। अखाड़। 20वां, अघोष से सघोष में परिवर्तित भी होते हैं, जैसे खेव। 21वां, वैसे क्ष का परिवर्तन प्राय ही ख में हुआ है, जैसे खत कुमेड़ा, खण खार, खेत, खेपथु, खेमिय। कहीं कहीं लिपि प्रभाव से क्ष ख को श लिखा गया है, यथा ईषणे, क्षणे, जखने, तशने। 22वां, अनेक स्थानों पर महाप्राण ध्वनि अल्प प्राण में बदल जाती है, अदरो, अनुवद। अनेक स्थान पर आदि में महाप्राण का आगम भी हुआ है, हुनक, हिनक, हुलास। रूप विचार। 23वां, मैथिली में संज्ञाओं के चार रूप मिलते हैं। श्री गिरिवर्षन ने लिखा है कि घोड़ा के चार रूप घोड़, घोड़ा, घोड़वा और घोड़ौवा मिलते हैं। विद्यापति की पदावली में इस प्रकार के चारों रूप ढूंढना बेकार है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पदावली मैथिल प्रभाव से पूर्णतः भेगी हुई प्राचीन साहित्य अभ्रंश उत्पन्न प्राचीन ब्रज या अवहट्ट की रचना है। इसलिए इसमें मैथिल बोली की खांटी देशज प्रयोग नहीं ढूंढे जाने चाहिए। वैसे पदावली में संज्ञा के दो रूप अकारांत और आकारांत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञाएं प्राय इकारांत अथवा संस्कृत के ढंग में आकारांत प्रयुक्त हुई हैं। कहीं कहीं वा ऊन वाचक का एक रूपांतर आ भी मिलता है। वैसे भिक्षा का भिखिया वा वाले रूप काफी हैं। भिन्न शर्मा, कहवा, कोवा, गरवा, घरवा, चकेव और चकेवा। उकारांत रूप उत्तरो, वतियो, हसियो, संगमो, मिलनो, विरहो आदि रूप संस्कृत उत्तरोपि के ढंग के बने हुए प्रतीत होते हैं। नीचे लिखे गए रूपों में दीर्घ स्वरांत का ह्रस्व का दीर्घ का ह्रस्व में परिवर्तन लक्ष्य है। उपमा का उपाम, कौड़ी का नहा, कृष्ण का काण कान, केचुआ, गता, गमारा, ग्रीम या भ्रंश के स्यादव दीर्घ ह्रस्व से ही चली आ रही प्रवृत्ति है। 24वां, सर्वनाम के रूपों में बड़ा वैविध्य दिखाई पड़ता है। बहुत से सर्वनाम जो ब्रजभाषा से मिलते जुलते हैं पहले ही विश्लेषित किए जा चुके हैं। यहाँ सिर्फ ऐसे रूपों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जो मैथिली की अपनी प्रवृत्ति के सूचक हैं। उत्तम पुरुष के हमें हम, मध्यम पुरुष के तय, तुम्हें तथा अन्य पुरुष के उन्हें आदि रूप मैथिली के अपने रूप हैं। उसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम ई, ए तथा दूरवर्ती निश्चय के ओ, उन आदि रूप विशिष्ट हैं। संबंधवाचक जे, जा तथा सहसंबंध से, सह आदि, प्रश्नवाचक के कौन, की का आदि भी मैथिली ही है। हेहु, केउ, काहु, कौन, काहुक आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ब्रज और मैथिली के मिले जुले रूपों से निश्रित हैं। 25वां, विभक्ति और परसर्गों में भी मैथिली के विशिष्ट प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण परसर्ग षष्ठी का क परसर्ग है। कुछ लोग इसे विभक्ति कहते हैं, पर यह परसर्गवत ही प्रयुक्त होती है और इसकी व्युत्पत्ति इसे विभक्ति की अपेक्षा परसर्ग ही सिद्ध भी करती है। इसकी व्युत्पत्ति काफ़ी संदेहास्पद है। अब तक के नाना मत मतांतरों का सार नीचे दिया जा रहा है। पहला, संस्कृत के क प्रत्यय भद्रवज्यो कणपाणिनी से ही इसकी उत्पत्ति हो सकती है, मद्रक मद्र देश का। दूसरा, कुछ लोग इसकी उत्पत्ति संस्कृत कृत से भी मानते हैं। हार्नरी ने इसका विकास इस प्रकार माना है, संस्कृत कृत प्राकृत करितो करिओ केरको अभ्रंश केरको केरो हिंदी केर का। 26वां, विद्यापति की पदावली में निम्नलिखित शब्द परसर्गवत प्रयुक्त मिलते हैं। चतुर्थी में कारण और कारणे मिलते हैं। पहला, विरहीन जन मारण कारण, विरहणियों को मारने के लिए। दूसरा, काजक कारणे कार्य के लिए। 27वां, पंचमी अपादान में दये और दुआरे रूप मिलते हैं। पहला, पथिक दये समदस चाही, पथिक के द्वारा समाचार भेजना चाहती है। दूसरा, पर दुआरे समाद, वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा संवाद भेजना चाहती है। तीसरा, परक दुआरे करहु जनुकाज, दूसरे के द्वारा काम मत कराओ। 28वां, जके बहुत ही प्रसिद्ध समता सूचक परसर्ग है, जैसे परिछहु जके हंसी उतरहु न देश। इसी प्रकार जका जजो जनिर आदि भी समता सूचक परसर्ग है। 29वां, चाही तुलनात्मक परसर्ग है, जो दो पदार्थों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। कमल चाह कलेवर कोमल, यानी कमल से भी ज्यादा कोमल कलेवर वाली। 30वां, संप्रदान कारक में लगी और लागल रूप अनेक बार प्रयुक्त होते हैं, जैसे तिल गए लगी रहल अघजीव, दर्शन लागी पुजये नित काम, रूप लागल मन धावल। ये सभी परसर्ग संस्कृत लगने से निश्रित हैं। अधिकरण कारक में पय तेरे तल तहितल आदि रूप मिलते हैं। पहला, अवयव सब ही नयन पय भाषा। दूसरा, कुछ कोरक तरे। 31वां, पदावली की भाषा में क्रियाओं के विविध रूप मिलते हैं। कुछ निसंदेह विशिष्ट पूर्वी प्रयोग हैं और अधिकांश के रूप परवर्ती और शेरी अभ्रंश से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। 32वां, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान के निम्नलिखित रूप मिलते हैं, एक वचन बहुवचन उत्तम पुरुष इमि ऊ ओ करिमि करौं करो, मध्यम एक वचन हिसी करिहि करिसी, अन्य में आए आई, बहुवचन हिन वरिसहि विरसरंत, आय आयसी कहे चेतय चाहे जाय जागय चरई अपय आदि सामान्य वर्तमान क्रिया के उदाहरण हैं। 33, तिडंत से बने उपयुक्त किस्म के रूपों के अलावा वर्तमान काल में मूल धातु का भी प्रयोग होता है। पहला, मन विद्यापति, विद्यापति कहते हैं। दूसरा, के जान उत्पत्ति तोरी, तेरी उत्पत्ति कौन जानता है। कवि भान, कवि कहता है। चौथा, दुःख नयन कर, दोनों के नेत्र कहते हैं। पांचवा, विद्यापति कवि गाओ, विद्यापति गाते हैं। इस तरह के प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में भी किए हैं। डॉक्टर चटर्जी ने इसकी उत्पत्ति अति आई आई अ से माना है। इस तरह के प्रयोग मध्यकाल के दूसरे कवियों ने भी किए हैं। तुलसी जायसी की रचनाओं में भी ये प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कह रावण सुन सुमुख सयानी, तुलसी और जायसी ने मूल धातु का प्रयोग सामान्य भूतकाल के लिए भी किया है। पहला, मधुर वचन सीता जब बोला, यानी बोल। दूसरा, रहा न जीवन आव बुढ़ापा, यानी जायसी। इससे लगता है कि इस क्रिया रूपों को संस्कृत वर्तमान कालिक दिगंत से निष्पन्न मानना ठीक न होगा। 34, विद्यापति ने वर्तमान काल में थी विभक्ति से बने हुए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। पहला, रूप नारायण ई रस जानत। दूसरा, भनिजन करथि परक उपकार। तीसरा, भुजग भनावथि। इन रूपों से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वी हिंदी में थी वाले रूप विद्यापति के समय से ही प्रचलित हो गए थे। थी रूप कीर्तिलता में 13 बार प्रयुक्त हुआ है। वह विभक्ति संस्कृत दिगंध के इंति का विकसित रूपांतर है। इंति का त निश्चयार्थक अव्यय ही के साथ संयुक्त होकर थी रूप ग्रहण करता है। इसे अंत्य से जोड़ने की अनिवार्यता इसलिए होती है कि यह प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त विभक्ति है। 35वां अवहट्ठ में वर्तमान काल बहुवचन में वर्तमान कालिक कृदंत का भी प्रयोग मिलता है। पदावली में विद्यापति ने भी ऐसे प्रयोग किए हैं। इसके दो रूप होते हैं, कृ धातु का करत और करंत। इन रूपों पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। 36वां वर्तमान में संयुक्त कालिक क्रिया वाला रूप भी मिलता है। भूत कृदंत धन वर्तमान सहायक क्रिया। पहला मिलह अच, दूसरा गेल अच्छी, तीसरा रहल अच्छी, चौथा सुन लक्ष, पांचवा लगई, छठा लगई क्षति। ये सभी पूर्ण वर्तमान काल के रूप हैं। अच सहायक क्रिया की उत्पत्ति यों अनुमानित की जाती है, अंग क्षति अच्छई, अभ्रंश में छी या छई। भूतकाल, भूतकाल में पूर्वी नव्य भारतीय आर्य भाषा मैथिली भोजपुरी मगही बंगला आदि की मुख्य विभक्ति लौ है। इसके विषय में विस्तार के लिए कीर्तिलता की भाषा में तत्संबंधी टिप्पणी देखिए। 37 ल प्रत्यय अगोरल उछल उछलाह गरजल उर्झायल आयल लाछलि। पहला भूतकाल में कृदंत इत ई वाले रूप भी मिलते हैं, किंतु इन रूपों को अछाही प्रवृत्ति के प्रभाव से उकारांत अथवा उकारांत कर दिया गया है। अंगिर्य उन्मतिया उलसव गहियो छिड़ियाओ। दूसरा भूतकाल में संयुक्त क्रिया वाले रूप भी मिलते हैं। पहला छड़ी हलु हलल अवधारी वैसली अछलहु। तीसरा भूतकाल में ल विभक्ति के साथ अंत में महाप्राण का आगय भी दिखाई पड़ता है, एलाहु एलिहु कनेलह। 38 भविष्यत्काल, भविष्यत्काल में भविष्यति हुई यहाँ या होइस वाले ह और स रूपों के अलावा कर्तव्य कर वाले ब प्रकार के रूप प्रयोग में आते हैं। ब पूर्वी आर्य भाषाओं की अपनी विशेषता है। पहला ह प्रकार आउताह अराहिय बदन ह गमा वह चुम ओ बह जैवह। दूसरा ब प्रकार अनुमापिव अनुरंजव आओब खेपव फाव। तीसरा सब प्रकार के रूप प्राय नहीं मिलते, अराखे हिसी खोवा ओविसी आदि। उदाहरण डॉक्टर सुभद्र झा ने दिए हैं। इस पर ध्यान देने की बात है कि स और ह प्रकार के रूपों में प्राय ब भी संयुक्त रहता है। 39 विधि क्रिया तथा आज्ञार्थ। पहला अभ्रंश में इयई अथवा इज्जई के द्वारा कर्मवाच्य के प्रयोग से करियई अथवा करिज्जई धन करिजे कीजिए आदि रूप बनते हैं। विद्यापति के प्रयोग देखिए, आरोहियई उजिअई। दूसरा थी विभक्ति का आज्ञार्थक रूप थ होता है, उगथु करथु खेफथु गावथु गुंजथु छणाथु जीवथु रारवथु। तीसरा अनेक स्थानों पर क्रिया के मूला धातु ही आज्ञार्थक भाव प्रकट कर देती है, अनुसर आव उपवाव। कुछ असार्थक वाले रूप भी मिलते हैं, जैसे आना। 40 पदावली की भाषा में वर्तमान कालिक कृदंत से बने हुए रूप एक विशिष्ट अर्थ के साथ प्रयुक्त हुए हैं। कहीं ये विशेषणवत, कहीं कार्य की निरंतरता सूचित करने के लिए, और कहीं सीधे वर्तमान कालिक क्रिया से संयुक्त होकर संयुक्त काल का रूप लेकर प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें जीरण कह सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। आयित उगईते चाहेते जायते जहेते जकईते झपईत मुसईते। 41 पूर्वकालिक क्रिया प्राय ई लगाकर बनती है, जैसे करी देई आई आदि, पर कहीं कहीं इस ई का य या ए भी हो जाता है, जैसे मनलाए वलिए विमोय। पूर्वकालिक द्वित्व के प्रयोग भी मिलते हैं। ये प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में कृ धातु के करी या उसी के विकृत क कौ या कहु रूप लगाकर बनते हैं। जोई कहूँ, तिज कहूँ, कस कई, कहें कहूँ, जो कि कहूँ। 42 अव्यय स्थानवाचक अंतय आगा अनत ऊर एतय एतहि उकदिशि ओतहु कतहु। दूसरा कालवाचक अवहि आयता आनकाय आवय एतय कइये कतबेरी कतिखन। तीसरा प्रकारवाचक आने आने ऐछन ऐसन एहो कतपरि कमन जइयो कइये माह किए परि कोने परि कके एहना। चौथा परिमाणवाचक एतवा एतवाए ओछो कितने कता। पांचवा संयोजक औ औक अओका एव। रचनात्मक प्रत्यय वा लगाकर क्रियार्थक संज्ञा बनाने की परिपाटी अभ्रंश में प्रचलित हुई। यह संस्कृत तब्यत एवौ एवा वा से बनी। अयवा पन अभ्रंश पण से निश्रित छैलपन टिटिपन नागरीपन। इम चतुरीम चंद्रिम अतिपरिम पुरीम चंगीम। पा से वाल से आर से कोतवाल। गमार गोआर वति धनमति से गुणमति नारी उदमति पुनमति। शब्दकोश पदावली की शब्दावली बड़ी विलक्षण और महत्वपूर्ण है। विद्यापति ने अपने समय की लोक भाषा को बड़े आदर के साथ अपने पद में स्थान दिया। परिमाणतः अनेक देशी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अपंझंप आड़ेह चिहाए कसनिडोर लगेनी खखेरा खातरी खिखियाईर खोइछा खोट गोट गोड़ घोघट चंगिम चटाई चढ़ली चढ़ईक चाह चूकिए चेप तौकी चढ़ाए छितरी छिरियायल छोल छोरकी झटक झंखईते झाशईत झामर झकझोर झुर झूमर लोरी झोरी टरु टाद डगर डर डार डारे डोल ढर धसी धाधस धेहुर पतओलरी पपिहरा फाटली फदाए फिरतु फुफुआएत फेकलौ फोड़ब बटुराले बदलल बुड़ली बीड़। सर्वाधिक संख्या तद्भव शब्दों की है जो ध्वनि परिवर्तन के दौर से गुजरने के बाद बहुत ही श्रुति मधुर और आकर्षक रूप ग्रहण कर लेते हैं। विद्यापति संस्कृत की ज्ञाता थे। पदावली में ही हाटक अस्तोदक जृम्भसी नेत्रक चंद्रिम जैसे संस्कारी शब्द ज्यों के त्यों या किंचित तद्भव आभास लिए हुए प्रयुक्त दिखाई पड़ते हैं। वहीं ढेरों संस्कृत शब्दों के सुंदर तद्भव रूप किस पाठक के चित्त को मुग्ध नहीं करते। वस्तुतः विद्यापति शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधान और जागरूक रहने वाले कवि हैं। पदावली में प्रयुक्त विदेशी शब्दों की संख्या अत्यंत न्यून है। निक कीन महलम मोहरे जैसे कुछ प्रयोग मिल जाते हैं।